الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، عنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم أرنا الحق حقا والفتنة باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو سورة النجم کی تفسیر ہماری اس کلاس میں چل رہی ہے. اس میں ہم پچھلی کم از کم دو کلاس کا حال بنے، ایک کلاس سے آیت نمبر 33 سے لے کر کے 62 تک کی ترجمہ پڑھ رہے ہیں. پچھلی کلاس میں ترجمہ مکمل ہو گیا تھا. یہ سورہ نجم کی آخری آیات ہیں، تو ترجمہ کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں. پیج نمبر 214 جو معرفت القرآن کی ایک پبلش پرنٹنگ کے حساب سے بنتا ہے، تو اس میں شان نزول لکھا ہے. پہلے فرماتے ہیں کہ در منصور میں بروایت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ ایک بہت بڑے مفسر قرآن تھے اور مؤرخ تھے. ان کی تفسیر بھی 30 جلدوں پر ہے، 30 volumes، اور ان کی تاریخ کی کتاب بھی 30 volumes کے اوپر ہے. یعنی ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اتنا لکھا اپنی زندگی میں، اتنا لکھا کہ اگر ان کی زندگی کے دنوں کو ان کے لکھے ہوئے ورقوں کے اوپر، اوراق کے اوپر تقسیم کیا جائے، تو ایک دن میں 40 ورق انہوں نے لکھے. ایک دن میں 40 ورق انہوں نے لکھے اگر اس طریقے سے ڈیوائڈ کیا جائے. اوبویسلی انہوں نے پوری زندگی ہر دن تو نہیں لکھا ہوگا، کچھ سفر بھی کیے ہوں گے، کچھ اور بھی مسئلے ہوئے ہوں گے، اور بچپن میں تو انسان نہیں لکھتا، ٹھیک ہے، بڑے ہو کر کے لکھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو ایک ایک دن میں یہ کئی کئی 100 صفحے لکھا کرتے تھے. اور لکھنے کے لیے انسان کو پڑھنا بھی چاہیے ہوتا ہے، ہم تو 40 صفحے پڑھ نہیں سکتے، ہے نا، تو یہ پڑھتے کتنا ہوں گے اور ان کا علم کتنا زیادہ ہوگا ویسے ہی سن کر کے. یعنی ہر چیز پڑھنے سے نہیں آتی، اور زمانے میں تو کتابیں بھی کم ہوتی تھیں، تو سن کر کے علم حاصل کیا جاتا تھا نا زیادہ تر. تو سنتے کتنا ہوں گے اور دیکھتے کتنا ہوں گے اور پڑھتے کتنا ہوں گے، پھر اس کے بعد لکھتے تھے، تو پھر کئی کئی 100 حروف جو ورق ہوتے تھے، پیجز، وہ ایک ایک دن میں لکھ لیا کرتے تھے. تو ہماری امت میں ایسے ایسے حضرات گزرے ہیں جنہوں نے علم کی اتنی خدمت کری. تو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ کوئی شخص اسلام لے آیا تھا، اس کے کسی ساتھی نے اس کو ملامت کی کہ تو نے اپنے باپ دادا کے دین کو کیوں چھوڑ دیا. تو اس نے کہا کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یہ بات اس نے کہی کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، کیونکہ یہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. تو یہ سن کر کے میں نے اسلام قبول کر لیا. تو وہ بولا، یعنی اس کا دوست بولا، کہ تو مجھے کچھ دے دے تو میں آخرت کا تیرا عذاب اپنے سر رکھ لوں گا، ٹھیک ہے، تو عذاب سے بچ جائے گا، تم مجھے کچھ پیمنٹ کر دو، ٹھیک ہے نا، یعنی آخرت کے عذاب کو ٹالنے کے لیے یہ اس سے پیمنٹ مانگ رہا ہے. ویسے تو یہ سن کر کے بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. اس کے یہ بات کہنے کی وجہ تو یہ تھی کہ یہ لوگ تو آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے کہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہے. تو اس نے تو نا طنز مزاح اور گویا کہ یعنی ایک ہنسی مذاق میں اس طرح کی بات کری، ٹھیک ہے. لیکن اس بندے نے جو کہ مسلمان ہو گیا تھا، اس نے اس بات کو بڑا سیریسلی لے لیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو آخرت کے عذاب کو مان گیا تھا اس وقت میں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس دور میں ہم نے سنا اور باقاعدہ پڑھا بھی ऐसे फिरके मौजूद हैं कि जो कि आखिरत का अजाब टालने के लिए बकायदा उन्होंने पेमेंट रखी हुई है। ये जो आगा खानी और जिसको इस्माइली फिरका भी कहते हैं, तो इनके यहाँ इस तरह से पढ़ा कि भाई अगर आपको फलाना गुनाह बख्शवाना है तो आप इतनी रकम पे करें जमात खाने के अंदर जाकर के, ठीक है, और अगर आपको फलाना गुनाह बख्शवाना है तो आप इतनी रकम पे करें, और फलाना गुनाह है तो इतनी रकम पे करें जाकर के, ठीक है। इस वजह से इनकी जमात खानों के अंदर जो है ना वो यानी खजाने भरे हुए होते हैं, इतना माल होता है। अब जाहिर है आजकल रखते तो नहीं होंगे, बैंक अकाउंट में जमा करवाते होंगे, लेकिन इतना अमाउंट, इतना पैसा होता है, इतना पैसा होता है, जब भी इनके जो बड़े होते हैं ना वो दुनिया के मालदार तरीन लोगों में होते हैं, ठीक है। तो बहरहाल, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप मस्जिद के ऊपर खर्च ना करें, या आप अपने बुजुर्गों को हदिया नहीं दे सकते, आप कुछ दे नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि अकीदा, ये अकीदा रख करके हदिया देना कि मैं इतने पैसे दूंगा तो मेरा ये गुनाह बख्शा जाएगा, मसला इस अकीदे के साथ है। क्योंकि कुरान और हदीस से साबित है कि गुनाह बख्शवाने के लिए गुनाह कबीरा तौबा करनी पड़ती है, पैसे नहीं देने पड़ते। पैसे देने से गुनाह बख्शवाना ये कहाँ से आ गया, ये कौन से कुरान की आयत से और कौन सी हदीस से जो है वो गुनाह कबीरा बख्शवाने का नया तरीका ईजाद कर लिया, ठीक है। बहरहाल, इस दुनिया में आज के दौर के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिसकी इब्तिदा लगता ही है कि इस बंदे ने करी थी कि तुम मुझे इतने पैसे दे दो तो मैं आखिरत का तुम्हारा अजाब जो है ना वो अपने सर ले लूंगा और तुम अजाब से बच जाओगे। चुनाचे इसने कुछ दे दिया उसको, उसने और मांगा तो कुछ कशाकशी के बाद कुछ और भी दे दिया, ठीक है, यानी कुछ क्या कहते हैं हमारे यहाँ लल्ले तलल्ले करने के बाद, है कुछ यानी बहाने बनाने के बाद बिलाकर उसने कुछ और भी दे दिया, और बकिया की दस्तावेज मां गवाहों के लिख दी कि बाकी मैं तुम्हें बाद में दूंगा, ठीक है, बकायदा एग्रीमेंट कर लिया। रूहुल मानी में इस शख्स का नाम वलीद बिन मुगीरा लिखा है, जिसका इस्लाम की तरफ मिलान हो गया था, उसके दोस्त ने मलामत करी और अजाब की जिम्मेदारी अपने सर ले ली, ठीक है। इसी वजह से जो उसूल हमारे सामने आता है वो ये कि ये जो बुरे दोस्त होते हैं ना, ये शैतान से भी ज्यादा बुरे होते हैं, जो कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताब में लिखा है कि बुरा दोस्त सांप से भी ज्यादा बुरा, बल्कि बुरा दोस्त तो शैतान से भी ज्यादा बुरा होता है। क्यों? इसलिए कि शैतान तो सिर्फ बुराई के ख्यालात डालता है, वसवसे डालता है, वो हाथ पकड़ के मजबूर नहीं करता गुनाह करवाने पर, लेकिन बुरा दोस्त यानी इंसान जो होता है, चाहे वो मुसलमान बजाहिर क्यों ना लगता हो, लेकिन वो तो हाथ पकड़ करके गुनाह करवाता है, हाथ पकड़ करके ऐसी जगहों पे लेकर के जाता है जहां पर कि इंसान फिर गुनाह से नहीं बच सकता, ठीक है। इस वजह से हम अपने तौर पर इबादतें करते रहें और नेकी की तमन्नाएं करते रहें और नेक बनने की दुआएं मांगते रहें, लेकिन बुरी दोस्ती को छोड़ने के लिए तैयार ना हो, तो इससे बड़ी गलत यानी इससे बड़ा गलत फैसला नहीं हो सकता। क्योंकि बुरा दोस्त आज नहीं तो कल हमें वापस बुराई के ऊपर लेकर के आएगा, अगरचे कि हम नेकी के रास्ते पे चल भी पड़े हो, फिर भी औलादों को भी बुरे दोस्तों से बचाने के लिए ना पहले से तैयार करना होता है, उनकी जहन साजी करनी पड़ती है छोटे छोटेपन से कि आपने दोस्तियां नहीं बनानी है आपने, बल्कि सबसे अच्छा तो ये है कि ये बोले कि हमसे पूछ के दोस्तियां बना रही है, हमसे पूछे बगैर आपने किसी को दोस्त नहीं बनाना है, ठीक है ना। इसलिए कि बच्चा जो है वो सही गलत में तमीज भी नहीं कर पाता, अगर आप उसको कह देंगे कि आपने अच्छे दोस्त बनाने, तो भाई वो उसको तो इतनी भी समझ नहीं है ना कि अच्छे दोस्त क्या होते हैं, बुरे दोस्त क्या होते हैं। तो इस वजह से ज्यादा अकलमंदी तो यही है कि उनसे ये कहा जाए कि हमें बताए बगैर या हमसे पूछे बगैर आप किसी को दोस्त नहीं बनाएंगे, ठीक है। और दोस्ती का मतलब क्या होता है? दोस्ती का मतलब होता है कोई आप में से बताए, चले बहुत दफा आज बता चुका है तो आप में से कुछ पुरानी भी है, तो कोई बताए दोस्ती का मतलब क्या होता है, फ्रेंडशिप क्या चीज होती है, क्या क्या आप किसी से बात कर लेते हैं तो क्या आपको दो आप वो आपका दोस्त बन जाता है? तो अगर नहीं बनता तो फिर दोस्त किसको कहते हैं, ये आप बताए। साजिद ने कल भी क्लास में कहा था कि सवाल जवाब से ना फिर इंसान को सोचने का जरा मौका मिलता है, वरना फिर वन वे ट्रैफिक जो होती है ना वो एक कान से अंदर दाखिल हुई दूसरी कान से निकली, ये तो ट्रैफिक वाला मामला चल रहा होता है, या कभी तो ऊपर से ही गुजर जाती है, अंदर दाखिल भी नहीं होती। तो सोचने समझने से फिर बात समझ में आती है, जिसके लिए दिल में रغبत हो। अच्छा चले और कोई बताया अगर, जिसके लिए दिल में रغبत हो। अच्छा रغبत का जो लफ्ज है ना, तो इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि मतलब किस चीज की रغبत हो। थोड़ा सा और इसको अगर आप ओपन कर सकें, जिससे हम अपने मसले डिस्कस करके उससे मशवरा ले सकें। नहीं इससे तो ये आदमी एग्री नहीं करेगा, इसलिए कि मशवरे तो आप अपने टीचर से भी ले सकते हैं, मशवरे आप जो है वो किसी मैरिज काउंसलर से भी ले सकते हैं कि भाई हमारी शादी में जो है वो मसले चल रहे हैं, तो अब काउंसलर के पास चले गए और उससे मशवरे करने शुरू कर दिए, तो वो काउंसलर आपका दोस्त नहीं बन जाता जो अच्छे बुरे में काम आए। मैंने आपसे अच्छे दोस्त की तारीफ नहीं पूछी है, मैंने आपसे दोस्त की तारीफ पूछी है, ठीक है, अच्छे दोस्त की तारीफ नहीं पूछी। When we trust someone and share everything with them, चलें ठीक है, जो आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करे, फिर वो अच्छे दोस्त की तारीफ बताना शुरू हो। भाई यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे दोस्त की बात हो रही है ना, जो जहन्नुम में लेकर के जाता है, तो आपसे जो है वो दोस्त की मुतलकन तारीफ पूछ रहे हैं, अच्छे दोस्त की तारीफ नहीं पूछ रहे, ठीक है। तो ऊपर जो उन्होंने लिखा था वो सही लिखा था कि जिसके लिए दिल में रग़बत हो। अब सवाल खाली ये रह जाता है कि किस बात की रग़बत हो, तो उसका जवाब ये होगा कि जिसके लिए दिल में मुलाकात की रग़बत हो, आपके दिल में जिससे मुलाकात करने की रग़बत हो, या अगर अच्छा मुलाकात काफी है वैसे ये लोग मुलाकात, लेकिन अगर वो बहुत दूर रहता है तो मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन बात तो हो सकती है, फोन के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर चैटिंग हो सकती है, व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिकेशन हो सकती है ना। तो मुलाकात अगर फिजिकली ना भी हो सकती हो तो जुबान यानी वर्बली तो मुलाकात हो सकती है ना, तो वो होता है दोस्त, कि जिसके लिए दिल में मुलाकात की और मुलाकात नहीं तो बात की रग़बत हो, जिसके साथ आप वक्त गुजारना पसंद करें, वक्त गुजारना पसंद करें, और जब वक्त गुजारेंगे तो फिर आप ट्रस्ट भी कर लेंगे, आप शेयर भी कर लेंगे बातों को, इसको कहते हैं दोस्त, ठीक है ना। दिल में रग़बत जिसके लिए हो, इसको दोस्ती कहते हैं, ठीक है। अब ये तारीफ इतनी अहम क्यों है समझना, वो इसलिए क्योंकि दफ्तर में भी हम बहुत सारे लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं, ठीक है, और कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत सारे लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं, ठीक है, उनके साथ प्रोजेक्ट भी करना होता है, असाइनमेंट्स भी करनी होती हैं, और यानी कभी जो है वो टूर्स भी करने होते हैं, कभी जो है वो उनके साथ जो है वो यानी आपको विजिट्स भी करने होते हैं किसी कस्टमर के पास किसी किसी जगह पर, है ना। तो वो लोग जो हैं वो आपके दोस्त कब कहलाएंगे, वो दोस्त सिर्फ उस वक्त कहलाएंगे जब आप उनसे मुलाकात के बहाने दिल में ढूंढते हो, मुलाकात के बहाने, बात के बहाने, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो दोस्त नहीं है, ठीक है। यानी आप सिर्फ काम की नीयत से उनके साथ वक्त गुजार रही हैं, जैसे दफ्तर में या कॉलेज में यूनिवर्सिटी में, हत्ता कि इवन घर में भी, अगर आप काम की वजह से किसी मजबूरी की वजह से किसी शख्स के साथ वक्त गुजार रहे हैं तो वो आपका दोस्त नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सबको, किसी को इसके ऊपर एतराज या कोई और आइडिया आपके जहन में हो तो प्लीज फील फ्री टू शेयर, ठीक है। ये क्यों बहुत जरूरी है, क्योंकि वक्त गुजारना तो बहुत सारे लोगों के साथ पड़ता है ना, लेकिन हर बंदे को आप दोस्त नहीं बना सकते, नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना, जैसे स्पेशली नॉन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर। तो औरतों को तो वैसे भी अल्लाह ताला ने तो पर्दे का हुक्म दिया है मुसलमान औरतों को, तो मुसलमान औरतों के लिए तो ये मसला वैसे ही नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर है तो फिर वो दूसरा मसला है, उनको तो पर्दे का मसला पड़ा हुआ है कि वो पर्दा ही नहीं कर रही, तो क्यों वो काफिरों के साथ वो टाइम स्पेंड कर रही है, ठीक है ना। वो तो दूसरा बड़ा मसला है, पर्दे वाला मसला। लेकिन मर्दों के लिए तो एक रियल प्रॉब्लम है ना, बिकॉज मर्दों ने तो बाहर निकलना है, उनकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने लगाई है कि उन्होंने अच्छी तालीम भी हासिल करनी है, उन्होंने कमाना भी है, उन्होंने काम भी करना है, सब कुछ करना है, और इसके लिए उनको काफिरों के साथ भी वक्त गुजारना पड़ेगा, बदअकीदा लोगों के साथ भी वक्त गुजारना पड़ेगा। तो उनके लिए ये चीज सबसे ज्यादा अहम है कि वो दोस्ती की तारीफ को समझें कि क्या दोस्ती है और क्या दोस्ती नहीं है, ठीक है। अगर काफिर के साथ दोस्ती लगाई, बदअकीदा इंसान के साथ दोस्ती लगाई, तो ये है गुनाहे कबीरा, कबीरा गुनाह। ये कुरान की नाफरमानी है, कुरान ने हराम कर दिया है दोस्त दोस्त बनाने को, काफिर को दोस्त बनाने को हराम कर दिया है, ठीक है। और जो शख्स ये करता है, चाहे वो हिंदू से लगाए चाहे क्रिश्चियन से लगाए, कृष्ण को समहाउ जो है ना वो हम कुछ कुछ कम दर्जे की चीज समझते हैं, कम कम मसला समझते हैं। सूरह मरियम की आयात पढ़ें, सूरह मरियम की आखिरी जो आयात है ना, चंद लास्ट 3, 4, 5 आयात वगैरह, ठीक है ना, वो पढ़ें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग जो जो अल्लाह ताला के लिए बेटा तजवीज करते हैं, ये ऐसे है कि जैसे आसमान फट जाता, जमीन टूट जाती। ये इतनी इतनी भारी बात है अल्लाह के लिए बेटा तजवीज करना। लेकिन आज के मुसलमान जो है वो समझते हैं कि ईसाई तो हमारे बड़े करीबी हैं, वो तो हमारे दोस्त हैं। कहाँ से दोस्त आ गए वो? कोई नहीं दोस्त है वो ईसाई हमारे, ठीक है। तो इस वजह से दोस्ती का मामला जो है वो बड़ा अहम है। दोस्त हाथ पकड़ करके ना इंसान को कुफर में ले जाता है, दोस्त हाथ पकड़ करके इंसान को गुनाह कबीरा के जिंदगी के अंदर मुब्तला कर देता है। उन्होंने सवाल पूछा है, क्या नॉन मुस्लिम औरतों से भी हमें पर्दे का हुक्म है? देखें, नॉन मुस्लिम औरतों से पर्दे का हुक्म तो है, लेकिन इसके ऊपर उलमाए उम्मत का इस बात पर भी इजमा है कि वो किस हद तक, ठीक है। अगर मजबूरी का सिचुएशन है तो फिर वहां पर नॉन मुस्लिम औरतों के साथ जो है वो पर्दे के अहकामात वैसे नहीं रहते जैसे कि मर्दों के साथ रहते हैं, ठीक है। स्पेशली इंडिया के लिए, इंडिया के उलमा का फतवा इसीलिए इसी पर है कि वहां पर जो है ना वो मेजोरिटी जो है वो नॉन मुस्लिम्स की है। तो अब अगर नॉन मुस्लिम औरतों से मुसलमान औरतों का पर्दा होगा तो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर स्पेशली जो स्टाफ होता है, जो नर्सेज होती हैं, वो औरतें नॉन मुस्लिम होती हैं, ठीक है। और हत्ता के अब तो बदकिस्मती बदबख्ती मुसलमानों की, मुसलमान मुल्कों के अंदर भी यही मसला पड़ा हुआ है कि मेडिकल स्टाफ जो है ना वो नॉन मुस्लिम औरतों पर होता है। मर्द तो जायज नहीं हो जाता, लेकिन औरत जो है उसके लिए फिर तफसील है इसके अंदर। हम इंडियंस जैसे स्कूल और कॉलेजेस में साथ पढ़ते हैं, फिर उठना बैठना हंस बोल देना वो भी गुनाह कबीरा है। आपको बता दिया है ना दिल की रग़बत, ठीक है ना। अब अगर ये दिल की रग़बत की वजह से आप हंसना बैठना और बातचीत कर लेना है तो फिर ये गुनाह कबीरा है, ठीक है ना। और अगर जो है ना वो जस्ट टू गेट बाय, ठीक है, जस्ट टू गेट योर वर्क डन, इसकी नीयत से आप किसी के साथ, किसी औरत के साथ, मर्द के साथ तो वैसे ही हराम है ना, मर्द के साथ तो किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है कि आप हंसना बोलना और बातचीत करना, क्योंकि जी हम इंडिया में रहते हैं। नहीं भाई, इंडिया वाले कोई दुनिया के अजीब मखलूक नहीं है, तो इंडिया वालों के लिए कोई शरीयत जो होती है वो चेंज नहीं हो जाती, ठीक है ना। ये लोग जो है वो अमेरिका में भी रहते हैं और यूरोप में भी रहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं और अफ्रीका के नॉन मुस्लिम कंट्रीज में भी रहते हैं। इंडियन वाहिद नहीं है जो कि नॉन मुस्लिम के साथ रहते हैं, ठीक है। तो उनको बात समझने की जरूरत है कि ये अपनी तरफ से एक्सेप्शन अपने लिए ना बनाए, ठीक है। तो दिल की रग़बत के साथ कहीं भी, हत्ता के पाकिस्तान के अंदर जहाँ सो कॉल्ड 95% मुसलमान रहते हैं, तो वहां पर भी अगर काफिर, वहां पे हिंदू रहते हैं बहुत सारे, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे क्रिश्चियन रहते हैं, बहुत कादियानी रहते हैं, बहुत सारे जो है वो और भी इस किस्म के बदअकीदा किस्म के लोग रहते हैं, तो पाकिस्तान में रहते हुए भी अगर ये हरकत करेंगे तो तुम्हारे कबीरा होगा। अहले तशी से दोस्ती भी गुनाह है? जी हाँ, अहले तशी से भी दोस्ती गुनाह है, दिल की रग़बत के साथ। और दोस्ती दोस्ती दिल की रग़बत ही के साथ होती है, ये कोई चीज़ नहीं होती, कोई ऐसी दोस्ती दुनिया में नहीं होती जिसके अंदर दिल की रग़बत ना हो। बिकॉज दोस्ती की तारीफ ही ये है, वली वली दोस्ती विलायत, इसको दोस्ती कहते हैं। ऐसी दोस्ती भी जो है कबीरा में आता है। जी हाँ बिल्कुल आता है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को और आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा को क्या जवाब देंगी कयामत के दिन? क्या जवाब देंगी उनको उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को कि जो आपको गालियां देते थे हमने उनके साथ दोस्ती लगाई हुई थी? उस दिन मसला हो जाएगा बहुत बड़ा। ये बातें हम सोचते नहीं है ना। अच्छा, खुलासा तफसीर फरमाते हैं कि आपने नेकों की सिफात तो सुन ली, तो भला आपने ऐसे शख्स को ही देखा जिसने दीन हक से रूगर्दानी की? तवल्ला दीन हक से रूगर्दानी की। हाँ गर्ल्स से ही, मैं आपको गर्ल्स ही बात समझती नहीं है, गर्ल्स से ही तो बात हुई है सारी की सारी। मर्दों से तो चाहे मुसलमान मर्द के साथ आप हंसी मजाक करें, हंस बोलने मुसलमान मर्द के साथ भी हराम है। तो डिस्कशन इज ऑल अबाउट गर्ल्स, यहाँ पर हिंदू गर्ल से डिस्कशन की बात हो रही है कि अगर वो दिल की रग़बत दोस्ती के साथ है हराम है। बात समझ में आई? ठीक है, या अभी तक समझ में नहीं आई? आपने नेकों की सिफात को सुन ली, तो भला आपने ऐसे शख्स को भी देखा जिसने दीन हक से रूगर्दानी की यानी इस्लाम से हट गया और थोड़ा माल दिया और फिर बंद कर दिया, यानी जिस शख्स से माल देने का वादा अपने मतलब के वास्ते किया था वो भी पूरा ना दिया। और इसी से मफहूम हुआ कि ऐसा शख्स दूसरों के नफर आसाने के लिए क्या खर्च करेगा जब अपने ही मतलब के लिए पूरा खर्च ना कर सका। जिसका हासिल उसका बखील होना है, यानी कंक्लूजन क्या निकला कि ये परले दर्जे का बखील इंसान है, माइजर। ठीक है, क्या इस शख्स के पास किसी सही जरिए से इल्म गैब है कि इसको देख रहा है, यानी इसके पास कोई इल्म गैब? और इल्म गैब भी जो है वो जाहिर है जो सही जरिया होगा उसी के जरिए से इसके पास आएगा ना, गलत जरिए से तो इल्म गैब वैसे ही नहीं आ सकता। बहरहाल, तो इसके पास क्या कोई इल्म गैब है कि इसको देख रहा है जिसके जरिए से मालूम हो गया कि फला शख्स मेरी तरफ से मेरे गुनाहों का अजाब अपने सर लेकर मुझे अजाब से बचा देगा? तो ये तो हम तक तर्जुमे में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। खैर, क्या इसको इस मजमून की खबर नहीं पहुंची जो मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों में है और हसब रिवायत दुर्रे मंसूर दर तफसीर सूरह आला मूसा अलैहिस्सलाम के ये 10 सहीफे अलावा तौरात तौरात के हैं? ठीक है, यानी हजरत ने यहाँ पर मजीद तफसीर लिखी है। वैसे हमने तो जनरली पहले कह दिया था कि मूसा अलैहिस्सलाम सहीफों से मुराद है वो तौरात ही है, लेकिन उसमें मजीद तफसीर ये है कि तौरात की जो किताब थी उसके अलावा भी 10 सहीफे मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुए थे। तो जब तफसीली बात होती है तो फिर जाहिर है इसमें कुछ और तफसीलातें निकलती हैं। तो यहाँ पे वो 10 सहीफे मुराद हैं तफसीर दुर्र मंसूर के मुताबिक। ठीक है, खैर मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफे और नीज़ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफों में है, वह सयाती थी सूरह आला और अनकरीब ये आ रहा है सूरह आला के अंदर भी। ठीक है ना, जैसे कि इंदहा इब्राहिम और मूसा, वो सूरह सब्बिहिस्म रब्बिकल आला के अंदर भी अल्लाह ताला ने इस बात को नकल किया ना, इसी बात को मूसा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफों के बारे में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इन दोनों के सहीफों का जिक्र है उसी तरह सूरह आला के अंदर भी इन दोनों के सहीफों का जिक्र है। तो जिन्होंने अहकाम की पूरी बजावली की, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहे हैं, इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, कि जिन्होंने इब्राहिम अल्लाह ताला के अहकाम की पूरी बजावली करी, इसी को वफादारी कहते हैं ना। और वो मजमून ये है कि कोई शख्स किसी का गुनाह अपने ऊपर ऐसे तौर से नहीं ले सकता कि गुनाह करने वाला बरी हो जाए। फिर ये शख्स कैसे समझ गया कि मेरा सारा गुनाह ये शख्स अपने सर रख लेगा? यानी गुनाह का बार अपने ऊपर नहीं ले सकता, ठीक है, कि उस शख्स को जो है वो बरी कर दे और अपने ऊपर ले ले। ठीक है, तो फिर कैसे ले सकता है भाई? हजरत ने यहाँ पर यानी हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई तफसीर है ना ये, तो यानी ये जो बयानों कुरान से खुलासा तफसीर है, तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए कि कोई शख्स किसी का गुनाह अपने ऊपर ऐसे तौर से नहीं ले सकता कि गुनाह करने वाला बरी हो जाए? क्या मतलब है इसका? तो ऐसे तौर से नहीं ले सकता, तो किसी और तौर से ले सकता है ना? इससे तो यही जाहिर होता है ना कि किसी और तौर से ले सकता है, तो किसी और तौर से कैसे ले सकता है? वो ऐसे कि कोई शख्स गुनाह कर रहा है और ये उससे जो है ना, वो यानी उसके कहने के ऊपर ये भी गुनाह करना शुरू कर दे, उसके कहने के ऊपर, उसकी तरगीब देने के ऊपर ये भी वो गुनाह करना शुरू कर दे, तो इससे क्या होगा कि वो जो गुनाह कर रहा है तो उसका गुनाह जो है वो इसके सर भी आ जाएगा, ठीक है? लेकिन इसके सर आने से ऐसा नहीं होगा कि उसके सर से ये उतर जाएगा, उसके सर पर भी रहेगा और इसके सर के ऊपर भी आ जाएगा, ठीक है? बहरहाल ये इसकी एक तशबीह है, एक तौजीह हो सकती है। बहरहाल तो लेकिन खैर वो किसी और के सर से ले नहीं सकता ये। अच्छा, उन्होंने एक लंबा सा मैसेज लिख दिया, तो उसको जरा देखना पड़ेगा कि दिल की रगबत, प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन। मेरे नहीं, मेरी नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने स्कूल कॉलेजेस में साथ होने की वजह से दोस्त बन जाते हैं। अब टिफिन्स भी शेयर हो रहे हैं, टिफिन मतलब जो लंच वंच लेकर आते हैं वो भी शेयर हो रहे हैं और हंसी मजाक भी हो रहा है, फिर क्या करें? और ना करें तो वैसे ही मुस्लिम्स को बहुत झंडे पर चढ़ाया हुआ है, झंडे पे चढ़ाया हुआ है, तो इसलिए और लोग अपने नॉन मुस्लिम्स के साथ अपने इख्तलाफ सही रखते हैं। बड़ा कंफ्यूजन किस्म का आपका ये मसला है, ठीक है ना? क्योंकि इसमें ना वो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज सेइंग, इज शोइंग, इसके अभी बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है ना? बहुत सारी चीज़ों को आपने मिक्सअप किया हुआ है, ठीक है ना? क्यों? इसलिए कि इखलाक सही रखना एक और चीज़ होती है और दिली रगबत रखना यानी दोस्ती रखना ये एक दूसरी चीज़ होती है, ठीक है ना? अब देखिए मसला ये है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ ये मसला नहीं है, आपने लिखा है कि मेरी नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है आपकी नहीं है, लेकिन दूसरों की तो है ना? तो भाई दूसरों की अगर ये है तो इससे कुरान का हुक्म तो नहीं तब्दील हो जाएगा, ठीक है ना? कुरान का हुक्म तो है अपनी जगह पर। अब अगर मुसलमान उसको फॉलो नहीं कर रही हैं तो हुज प्रॉब्लम इज दिस? है कुरान की प्रॉब्लम है ये, दीन की प्रॉब्लम है ये, या ये उस मुसलमान की प्रॉब्लम है कि वो अल्लाह के हुक्म को नहीं फॉलो कर रहा, ठीक है ना? अच्छा, बहुत सारी इसके अंदर आपने और बातें लिखी हैं कि अगर हम इस तरह, जैसे आपके सवाल से लग रहा है मैंने, तो आप बाकी लोगों के लिए आसानी की खातिर, आपका तो नाम वैसे भी जाहिर नहीं होगा, अच्छा क्या आपने प्राइवेट से लिखा है, तो आजिज ये करता है कि इस सवाल को जो है ना कॉपी करके एवरीवन को पेस्ट कर देता है ताकि आप लोगों के सामने भी मौजूद हो, ठीक है? तो ये इनका सवाल है, ठीक है? बाकी लोग पढ़ना चाहेंगे पढ़ लें, के स्कूल में होते हैं ना तो फिर हम उनसे टिफिन भी शेयर करते हैं और हंसी मजाक भी हो रहा है, तो फिर क्या करें? जवाब इसका ये है कि टिफिन शेयर ना करें और हंसी मजाक ना करें, ठीक है ना? इखलाक से पेश आने का मतलब है टिफिन शेयर करना, ये किसने कहा है आपको? और इखलाक से पेश आने का मतलब है लोग कि हंसी मजाक करना, ये आपको किसने कह दिया? ये जिसने भी कहा है गलत कहा है, या आपकी अपनी सोच है तो गलत सोच है, ठीक है? और दूसरी बात यह है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, यानी टिफिन शेयर करना और हंसी मजाक करना और घर में आने जाना, तो वो आपको झंडे पे चढ़ा देंगे। झंडे पे चढ़ाने का मतलब जो भी है, नेजे पे चढ़ा देंगे, मार देंगे, आग में डाल देंगे वगैरह। तो पहली बात तो ये है कि जो नहीं रखते तो उनको किसने झंडे पे चढ़ाया हुआ है, उनको किसने आग में डाला हुआ है? आपके क्या ख्याल है? वहां जिन जिन को जो है वो लिंचिंग हो रही है और जिन जिन को जो है वो आग में डाला या जो भी किया, वो पूछ करके क्या हाँ भी तुम्हारी किसी हिंदू से दोस्ती है? वो कहता है कि नहीं नहीं है, तो अच्छा क्यों नहीं है तुम्हारी दोस्ती हिंदू से? चलो चलो तुम्हें आग में डालते हैं, चलो तुम्हें झंडे पे चढ़ाते हैं, ऐसा होता है? फिर अकल इस्तेमाल करके जवाब दें इसका, या जनरल नॉलेज ही इस्तेमाल करके इसका जवाब दें कि ऐसा होता है? वो पूछते हैं कि हाँ भी तुम्हारी किसी से दोस्ती है, फिर उसके बाद जब दोस्ती नहीं होती है तो फिर उसके बाद उसको मारते हैं, क्या ऐसा है? तो जब ऐसा अगर नहीं है, जो कि आई नो कि नहीं है ऐसा, तो
फिर ये तो शैतान की तरफ से डाला हुआ ख्याल है ना कि अगर तुम हिंदुओं से दोस्ती बना लोगे तो तुम बच जाओगे। ये तो शैतान का डाला हुआ ख्याल है, ये तो झूठ बोल रहा है वो आपके साथ। तो ये सब बेवकूफी की बात है, बल्कि झूठ है असल में। असल में हम खुद दोस्ती बनाना चाहते हैं। हम इंडियन फिल्में और इंडियन मूवी स्टार्स, दे आर आवर आइडियल्स, वी लुक अप टू देम। तो हम तो इस तर्ज जिंदगी, जो कि हिंदुआना तर्ज जिंदगी है, हम तो उसको पसंद करते हैं। या क्रिश्चियंस की जो तो तर्ज जिंदगी, हम उसको तो पसंद करते हैं। तो जब उनके इस लाइफ स्टाइल को पसंद करते हैं तो फिर उनसे क्यों नहीं दोस्ती बनाएंगे? तो ये असल रीजंस कुछ और होती हैं, ये नहीं कि जान बच जाएगी उनसे दोस्ती बनाने की वजह से, ऐसा कुछ नहीं होता। और दूसरी बात यह कि इखलाक जो है ना, वो अल्लाह का हुक्म है। और ये अच्छे इखलाक, बल्कि सच बोलना, इंसाफ करना, ये हर गैर मुस्लिम के साथ फर्ज है। आप गैर मुस्लिम से झूठ नहीं बोल सकते जब तक कि उनके साथ खुली जंग का ऐलान ना हो जाओ। खुली जंग के ऐलान में आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अदरवाइज नहीं बोल सकते। जैसे कि इंडिया के अंदर या नॉन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर कोई खुली जंग नहीं है, आप झूठ नहीं बोल सकते किसी नॉन मुस्लिम के साथ, नाइंसाफी नहीं कर सकते नॉन मुस्लिम्स के साथ। लेकिन ये तो हम नहीं कर सकते। हम तो मुसलमान से झूठ बोलते हैं, तो नॉन मुस्लिम से कैसे ना झूठ बोले भाई? हम तो अपने घर वालों के साथ नाइंसाफी करते हैं, तो नॉन मुस्लिम के साथ कैसे नाइंसाफी ना करें? ठीक है ना, तो नाइंसाफी तो हम करते हैं, जो हमें नहीं करनी है। अल्लाह का हुक्म है कि नाइंसाफी नहीं करनी है, वो तो हम करते हैं। और अल्लाह का हुक्म है कि दोस्ती नहीं करनी है, लेकिन वो हमने करनी है। ठीक है ना, तो ये सब जो है ना, ये शैतान के, असल में हम शैतान के हैं फॉलोअर्स। ठीक है, तो शैतान को फॉलो करते हैं ना, तो ये इस पर हरकतें होती हैं। हम और ज्यादा अल्लाह ताला को नाराज करते हैं, और जब अल्लाह को नाराज करेंगे तो ना दुनिया में चैन पाएंगे ना आखिरत में चैन पाएंगे। यही मुसलमानों की जिल्लत की वजह है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन सा मुसलमान बड़े इज्जतदार रहते हैं? जलील हो रहे हैं सारे, रिसवा हो रहे हैं पाकिस्तान और सारे मुसलमान मुल्कों के अंदर रहते हुए जलील हो रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ताला का इख्तियार सिर्फ इंडिया में नहीं चलता, अल्लाह ताला का इख्तियार पाकिस्तान और मुसलमान मुल्कों के अंदर भी चलता है ना। जहां तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे बच नहीं सकते। असल वो जो आपको समझने की जरूरत है, आगे फरमाते हैं कि जिसका हासिल इसका बखील होना। क्या इस शख्स के पास किसी से या सही हो चुका, सहीफों के बारे में पढ़ रहे थे, तो फरमाया कि नीज इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफों में है वो सजा की थी सूरत आला, जिन्होंने अहकाम की पूरी वजावरी करी। और वो मजमून ये है कि कोई शख्स किसी का गुनाह अपने ऊपर ऐसे तौर से नहीं ले सकता कि गुनाह करने वाला बरी हो जाए। फिर ये शख्स कैसे समझ गया कि मेरा सारा गुनाह ये शख्स अपने सर रख लेगा? और ये मजमून है कि इंसान को ईमान के बारे में सिर्फ अपनी ही कमाई मिलेगी, यानी किसी दूसरे का ईमान इसके काम नहीं आएगा। क्योंकि अम्मी मुसलमान हो गई तो बच्चे भी जो है वो जन्नत में चले जाएंगे? नहीं, बस अगर इस मलामत करने वाले शख्स के पास ईमान हो, के पास ईमान होता तब भी इस शख्स के काम ना आता, चह जाए कि वहां भी ईमान अदारत है। यानी ये जो कह रहे हैं ना कि मैं तुम्हें वो आखिरत के अजाब से बचा लूंगा, ये तो खुद काफिर है। क्या मतलब? ये तो खुद आखिरत का मुनकिर है, आखिरत का इनकार करता है। ये किस बुनियाद पर इसको आखिरत से बचाएगा? ठीक है, तो बस ये एक तंजो मजाक का वाला एक मामला था, जिसको उस बंदे ने जो है उसकी उसकी मत मारी गई थी, उसने सीरियस ले लिया इस बात को। और ये मजमून है कि इंसान की सई बहुत जल्द देखी जाएगी। और ये मजमून भी है, यानी सूरह इब्राहिम व मूसा के अंदर, कि इंसान की जो सई है, मेहनत है, वो बहुत जल्द देखी जाएगी, यानी उसको दिखला दी जाएगी, फिर उसको पूरा बदला दे दिया जाएगा। ठीक है, बेशक इसने गुनाह किए थे, बहुत गुनाह किए थे, तो गुनाहों का इसको अजाब मिलेगा। लेकिन अगर इसने बहुत गुनाह किए लेकिन फिर अल्लाह ताला से दो रो के माफी मांग ली, तौबा कर ली, तो इस तौबा करने के ऊपर जो इसके गुनाह मिटाए जा रहे हैं ना, ये बात भी उसको दिखलाई जाएगी। देखो, तुमने तौबा कर ली थी, हमने तुम्हारे सारे गुनाह जो है वो माफ कर दिए। ठीक है, तो ये जो तौबा करना ना, ये भी सही है। सिर्फ गुनाह करना सही नहीं होता, मेहनत नहीं होता, बल्कि तौबा करना भी सही होता है, मेहनत होता है। और हकीकत तो यह है कि तौबा से बड़ी मेहनत और कोई नहीं होती, ठीक है ना। क्यों? इसलिए कि गुनाह करने के लिए तो इंसान अपने नफ्स की ख्वाहिश को पूरा कर रहा होता है, और तौबा करने में वो अपने नफ्स की मुखालिफत कर रहा होता है। नफ्स की मुखालिफत ज्यादा मुश्किल काम होता है, लेकिन इसके बदले में अल्लाह ताला उसके सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर देते हैं। तो जो उसने किया होगा ना, उसको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। गुनाह किया होगा तो सजा, तौबा करी होगी तो जजा। बावजूद इसके कि ये शख्स अपनी फलाह की सही से कैसे गाफिल हो गया, यानी ये सारी बातें जानने के बावजूद ये अपने कामयाबी, फलाह मतलब कामयाबी की मेहनत करने से कैसे गाफिल हो गया। और ये मजमून है, यानी इन सहीफों में ये मजमून भी है कि सबको आपके परवरदिगार ही के पास पहुंचता है, फिर वो शख्स कैसे निडर हो गया। निडर हो गया यानी कि कुछ नहीं होता, मैं दो करता फिरूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, कैसे निडर हो गया इस बात से। उन्होंने क्या लिखा है कि जैसे कि मुस्लिम मर्दों से भी बिला वजह बात करना मना है, और हम जैसे जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं वहाँ हमारे कजन्स भी होते हैं, और आफ्टर मैरिज फिर ब्रदर इन लॉ वगैरह होते हैं, उनसे किस हद तक कम्युनिकेट करना चाहिए। जो नामहरम होते हैं, चाहे वो ब्रदर इन लॉ हो चाहे वो कजन्स हो, ये सब नामहरम है, ठीक है। तो नामहरम से पर्दा फर्ज है औरत के ऊपर, पर्दा फर्ज, ठीक है। पर्दे का मतलब क्या होता है? पर्दे का मतलब ये होता है सेपरेशन, ठीक है, सेग्रीगेशन, बीच में आड़। पर्दे को आड़ भी कहते हैं, हिजाब भी कहते हैं। हिजाब का मतलब वो सर पे बांधा हुआ स्कार्फ नहीं होता, वो तो कपड़े की दुकानों में उसको हिजाब कहा जाता है, कपड़े की दुकान में। शरीयत में उसको हिजाब नहीं कहा जाता, शरीयत में हिजाब कहते हैं बीच में पर्दा, आड़, सेपरेशन, सेग्रीगेशन, ठीक है। तो नामहरम से पर्दा यानी सेग्रीगेशन और सेपरेशन फर्ज है, ठीक है। अब ये कैसे करना है और किस सिचुएशन में कैसा वाला पर्दा करना है, ठीक है ना, यानी कैसे सेग्रीगेशन करनी है, तो इसको फिर औरतों के लिए सीखना फर्ज है, फर्ज है औरतों के लिए। इस बात इसलिए कि पर्दा मर्द पर फर्ज नहीं है, अल्लाह ताला ने पर्दा औरत पर फर्ज किया है, ठीक है। तो अब जो फर्ज होता है उस फर्ज को करने का तरीका सीखना भी फर्ज होता है। जैसे नमाज, नमाज फर्ज है ना, ठीक है, नमाज कैसे पढ़नी है तो ये सीखना फर्ज नहीं है कि नमाज कैसे पढ़नी है। ऐसे ही आप बस, हाँ नमाज फर्ज है, नमाज फर्ज है, मैं खड़े होकर के कुछ कर लूंगी तो वो नमाज हो जाएगी मेरी, क्या नमाज हो जाएगी आपकी? नहीं, नमाज का तरीका सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। जकात, हाँ भी जकात फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है, तो जकात जो है वो मैं कुछ उठा करके ना अपने पास से कुछ पैसे दे दूँ गरीब को जा करके, तो मेरी जकात अदा हो जाएगी? नहीं, इसलिए कि जकात सीखना भी फर्ज है ना, सीख करके जकात अदा करेंगे तो फिर जकात होगी। तो पर्दा भी कोई अलग चीज नहीं है, पर्दा भी फर्ज है और उसको सीखना भी फर्ज है, ठीक है। तो अब इस ये पर्दे वाली क्लास तो खैर नहीं है, लेकिन पर्दे के लिए कम अज कम याद है इस वक्त आपको इतना बता दे कि आप कम अज कम एट द मिनिमम, ये जो मार्फुल कुरान आपके सामने है ना, इसकी जो वॉल्यूम 7 है, वॉल्यूम 7 जिल्द 7, उसमें है सूरह अहजाब, ठीक है। उस सूरह अहजाब के अंदर मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो इस मार्फुल कुरान के कंपाइलर हैं, उन्होंने पर्दे के अहकाम के ऊपर पूरा एक चैप्टर लिखा है, यानी कुछ पेजेस हैं उसके ऊपर। वहां से आप शुरू करें और उसको फिर आप टीचर से अपने पूछ पूछ करके सीखें, ठीक है, यानी सिर्फ बुक से नहीं, क्योंकि बुक जो है वो बगैर टीचर के नहीं समझ में आती है, ठीक है। अगर आप किसी टीचर से नहीं पूछेंगे ना, तो अगरचे कि आप कुरान की तफसीर पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपका टीचर बाय डिफॉल्ट कौन बन जाएगा? शैतान बन जाएगा, ठीक है। तो शैतान ना फिर आपको कंफ्यूज ही करेगा खाली, ठीक है। तो टीचर्स की गाइडेंस के साथ आप पर्दे के अहकाम पढ़ना शुरू करें, और आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको इंशाल्लाह पूरा पता जो है ना कैसे करना है, कजन से कैसे करना है, ब्रदर इन लॉ से कैसे करना है, घर के अंदर जॉइंट फैमिली में कैसे करना है, घर से बाहर कैसे करना है ना, ये सारी चीज़ें अलहमदिल्ला आपको इंशाल्लाह जरूर समझ में आ जाएगी, ठीक है, उसकी कोई तफसील की इस वक्त गुंजाइश नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि पर्दा तो करना है क्योंकि ये सब नामुमकिन है। ठीक है, आगे चलें कि बावजूद इसके कि ये शख्स अपनी तलाकी सही से कैसे गाफिल हो गया, और ये मजमून है कि सबको आपकी परवरदिगार ही के पास पहुंचना है, तो फिर वो शख्स कैसे निडर हो गया, और ये मजमून है कि, और ये मजमून भी है कि वही हंसता और रुलाता है, हुआ अबहा व अबका, है ना, अबहा का मतलब हंसाना और अबका का मतलब रुलाना, और ये कि वही मारता है और वही जो है वही मारता है और वही जलाता है, वह अमाता व अहया, और ये कि वही दोनों दोनों कसम यानी नर और मादा को नुतफे से बनाता है जब वो रहम में डाला जाता है। तो जब नुतफा रहम में यानी माँ के रहम में डाला जाता है, तो फिर वहां से जो है अल्लाह ताला फिर उसको लेकर के आगे चलते हैं, यानी मालिक तमाम तसरुफात का खुदा ही है। ठीक है ना, यानी तसरुफ कहते हैं चेंजेस, ठीक है, तो जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं, ठीक है ना, दुनिया के अंदर कायनात के अंदर जो भी अमल हो रहा होता है, क्योंकि जब भी कोई अमल होगा तो क्या होगा, जो पुरानी स्टेट थी वो चेंज होकर के एक नई स्टेट बन जाएगी। ठीक है ना, जैसे आप बैठे हैं, अब आप खड़े हो जाएं, तो ये जो खड़ा होना है तो ये आपने एक अमल किया, खड़े होने का अमल। अब इस खड़े होने से क्या हुआ, आपकी जो स्टेट थी ना, आपका जो हाल था बैठा हुआ, वो हाल अब चेंज हो गया, खड़ा हो गया वो हाल, अब आपका खड़े होने वाला हाल हो गया। ठीक है, तो ये कहते हैं तसरुफात, चेंजेस। ठीक है, तो अल्लाह ताला जो है ना, सिर्फ जो मौजूदात हैं यानी जो करंट हाल है, सिर्फ उनका मालिक नहीं है, बल्कि वो जो चेंज होकर के नए हाल में बन रहे हैं, अल्लाह ताला उसका भी मालिक है। ठीक है, तो तमाम तसरुफात का मालिक खुदा ही है, दूसरा नहीं है। फिर वो शख्स कैसे समझ गया कि कयामत के रोज ये तसरुफ के मुझको अजाब से बचा ले, किसी दूसरे के कब्जे में हो जाएगा। ठीक है ना, यानी ये काम अल्लाह ताला की बजाय कोई और कर लेगा, ये काम ही कैसे हो सकता है। तो हमें फिर, हम खड़े होते हैं तो क्या हम उसके मालिक नहीं है अपने खड़े होने के, अल्लाह ताला मालिक है इस खड़े होने का। ठीक है, तो क्या क्या जवाब है इसका, यानी एक सवाल पैदा होता है ना कि जब यहाँ लिखा हुआ है कि तमाम तसरुफात का मालिक खुदा ही है, तो फिर इंसान किस चीज का मालिक है भाई, सब तो अल्लाह ने करना है, तो हमने क्या करना है, हमें क्यों जन्नत में नेमतें मिलेंगी, फ्री की मिलेंगी जन्नत में नेमतें कुछ ना करने की, क्योंकि हम तो किसी चीज का मालिक ही नहीं है, तो हमें क्यों मिलेंगी नेमतें। उसी तरीके से अगर सब कुछ अल्लाह ने करना है, तो फिर जहन्नुम में अजाब किस बात का होगा, जब अल्लाह ही ने सब कुछ करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने उठाकर किसी को थप्पड़ मार दिया, ठीक है, तो ये तसर्रुफ किया ना कि भाई वो बेचारा आराम से बैठा हुआ था, थप्पड़ के बगैर बैठा हुआ था, उसका हाल ये था कि उसको किसी ने थप्पड़ नहीं मारा था, अब आपने उठाकर उसको थप्पड़ दे मारा, तो ये तसर्रुफ हो गया ना। तो यहाँ तो लिखा हुआ है कि तमाम तसर्रुफात का मालिक खुदा है, तो फिर आपको थप्पड़ मारने पर सजा क्यों मिलेगी। जन्नत जहन्नुम किस बात की, फिर जब तमाम तसर्रुफात का मालिक खुदा है, अल्लाह के हुक्म मानने में हमें मिलेगी, हमें अकल दी है, तो अकल दी है तो तसर्रुफात का मालिक खुदा है, तो अकल दी है तो इससे क्या सवाल का जवाब तो नहीं हुआ, ये क्या है, हमें किस बात के ऊपर जजा मिल रही है, हमें किस बात के ऊपर सजा मिल रही है, जब सब अल्लाह ने करना है तो हमें किस बात के ऊपर। अकल को यूज करके अच्छे और बुरे, चलें इसके लिए एक और प्रॉपर लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या है हमारे पास, क्या है, हम किस चीज के मालिक हैं, हम अपनी अकल के मालिक हैं। अच्छा, ये लेकिन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी हम सिर्फ इख्तियार के मालिक हैं, चॉइस, एक जहनी फैसला, जहन का फैसला, अकल का फैसला, हम इसके मालिक हैं बस, ठीक है, हम इससे ज्यादा के मालिक नहीं हैं, ठीक है। और हमें जो जन्नत में नेमत मिलती है वो इस फैसले को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने पर मिलती है, यानी अकल के फैसले को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक करेंगे तो जन्नत में जजा मिल जाएगी, अकल के फैसले को अल्लाह की मर्जी के खिलाफ करेंगे तो जहन्नम में सजा मिल जाएगी, ठीक है ना। हम इससे ज्यादा किसी चीज के का इख्तियार नहीं रखते। मिसाल के तौर पर अभी थप्पड़ वाली आपको मिसाल दी, ठीक है ना, तो आपने जहन में इरादा कर लिया कि सामने बैठे हुए शख्स को मैंने मारना है, ठीक है ना, फिर आपने यानी धैर्य बहुत तेजी के साथ आपने इरादा किया ना, और साथ साथ उल्टे हाथ से मारना है कि सीधे हाथ से मारना है ये भी आपने सोच लिया, है ना, थप्पड़ उल्टे हाथ से भी तो मारा जा सकता है ना, आपने सोच लिया कि हाँ मैंने ऐसे उसको थप्पड़ मारना है। अब जब आपने अपने हाथ को हिलाने की कोशिश करी, आपका हाथ ही नहीं हिल रहा, आपका हाथ नहीं हिल रहा, क्यों नहीं हिल रहा भाई, क्यों, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसी वक्त आपके हालत हाथ के ऊपर फालिज गिरा दिया, पैरालिसिस, फालिज। अब आप मार नहीं सकते, हालांकि आप चाह रहे हैं मारना, आप मार नहीं सकते। तो अगर आपका अपने हाथ के ऊपर इख्तियार होता तो आपको कौन रोक सकता था इससे, है ना, आपको कोई रोक सकता था उसको थप्पड़ मारने से अपने हाथ से, आप नहीं मार सकते ना उसको थप्पड़, क्यों, इसलिए कि अल्लाह ने हाथ को फालिज गिरा दिया, ठीक है। तो आपका इख्तियार किस चीज पर था, फिर आपका हाथ, आपका इख्तियार अपने हाथ पर भी नहीं है, तो आपका इख्तियार किस चीज पर है, आपका इख्तियार सिर्फ जहन के फैसले के ऊपर है, और अल्लाह ताला इसी फैसले की बुनियाद पर फिर आगे मामला फरमाते हैं, जजा और सजा वाला मामला फैसले की बुनियाद पर होता है, ठीक है। सही और गलत की पहचान करना नहीं, इतने तफसील की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये हाथ वाली मिसाल याद रखिएगा कि मारने का फैसला आपने कर लिया, लेकिन मार नहीं सकते जब तक अल्लाह ताला आपको इजाजत ना दे, ठीक है, यानी आपका हाथ ठीक ठाक रहेगा तब आप मार सकते हैं, वरना नहीं मार सकते, ठीक है। अच्छा, फिर वो शख्स कैसे समझ गया कि कयामत के रोज ये तसर्रुफ जो मुझको अजाब से बचा ले किसी दूसरे के कब्जे में हो जाएगा, और ये मजमून है कि दोबारा पैदा करना हस्ब वादा उसके जिम्मे है, यानी ऐसा जरूरी होने वाला है जैसे किसी के जिम्मे हो, तो इस शख्स के निडर होने की वजह ये भी ना होना चाहिए कि कयामत ना आएगी, ठीक है, यानी पैदा भी अल्लाह ने करना है और अजाब और हिसाब वो भी अल्लाह ने करना है, फिर अपने तौर पे बैठ करके दुनिया के अंदर फैसले करे चले जा रहे हैं कि ये होगा वो नहीं होगा, वैसा कर लूंगा मैं, ऐसा कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, और ये मजमून है कि वही गनी करता है, यानी सरमाया देता है, कैपिटल सरमाया देता है, और सरमाया देकर महफूज और बाकी रखता है, ठीक है ना। हुआ अगना व अकना, ये कुरान के अल्फाज हैं। तो अगना का मतलब क्या कि गनी करता है, सरमाया देता है, कैपिटल देता है, और अकना का मतलब ये कि उस कैपिटल को महफूज भी करता है, वरना ऐसा भी तो होता है ना कि आपको बहुत सारा कैपिटल मिला, उधर से गवर्नमेंट वाले आ गए और उन्होंने कहा जी ये कैपिटल जो है ना इसके ऊपर तो हम टैक्स लगाएंगे, ठीक है ना, ये कैपिटल आपके पास नहीं रह सकता, आप हमें दे दें सारा का सारा, या ये कि आपने इस कैपिटल को जो है ना वो प्रॉपर तरीके से हासिल नहीं किया, तो चले ये आपके पास ये नहीं रह सकता। तो खाली कैपिटल रहना देना काफी नहीं होता, बल्कि कैपिटल को महफूज रखना भी, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे अगना के साथ जो है वो अकना का भी लफ्ज इस्तेमाल किया, क्योंकि ये वलीद बिन मुगीरा जो था ना जिसकी के बारे में ये सारी बात चल रही है, यानी शान नुजूल है, ये बड़ा अमीर आदमी था, तो इसको पैसे भी किसने दिए, अल्लाह ने दिए, और इसके पास जो इतना सारा माल जो महफूज था तो ये महफूज भी अल्लाह ने किया, ठीक है। और ये कि वही मालिक है सितारे शेरा का भी, ठीक है, वह हुआ रब्बुश शेरा। तो सितारे शेरा क्या चीज होती है, जिसकी इबादत जाहिलियत में बाज लोग किया करते थे, यानी इंतसर, ठीक है, यानी ये जो मुशरिकीन थे तो ये सारे के सारे एक बुत की इबादत नहीं करते, बल्कि मुख्तलिफ बुतों की, और उनमें से कोई जो है वो सूरज की इबादत कर रहा है, कोई चांद की इबादत कर रहा है, कोई सितारों की इबादत कर रहा है, और सितारों में से भी कोई इसी इस सितारे की इबादत कर रहा है, कोई उस सितारे की इबादत कर रहा है, ठीक है। तो रब्बिश ये शेरा भी एक सितारा था जिसकी कुछ लोग इबादत किया करते थे, तो यानी इन तसर्रुफात व अशिया का मालिक भी वही है जैसे पहले तसर्रुफात का मालिक वही है। ठीक है, तो यानी सितारों में भी तसर्रुफात होते हैं ना, सितारा इधर से उधर जा रहा होता है, उधर से आगे चल रहा होता है, तो जो भी तब्दीलियां हैं वो और पीछे जिन तब्दीलियों का जिक्र किया सब का मालिक अल्लाह ताला है। और ऊपर के तसर्रुफात खुद इंसान की वजूद में है, यानी इंसान के वजूद में, ठीक है, यानी हमारे यहाँ जिंदा होना मरना ये सब हमारे वजूद से कुछ का ताल्लुक है। और बाद के तसर्रुफात मुतअल्लिकात इंसान में है, यानी जिनका इंसान के जिन चीज़ों से ताल्लुक होता है उनको मुतअल्लिकात इंसान कहा, या मुतअल्लिकात इंसान कहा। चुनाचे माल और सितारा दोनों खारिज हैं, हमारे वजूद से बाहर होते हैं, माल हमारा सितारे वगैरह। और शायद इन दो के जिक्र में इशारा हो कि जिसको तुम अपना मददगार समझते हो उसके रब भी हम ही हैं, फिर दूसरे को कयामत में इस शख्स की गुमान के मुआफिक क्या तसर्रुफ पहुंच सकता है। ठीक है, यानी कोई दूसरा तुम्हें कैसे बचा सकता है, हम उसके भी रब हैं, जिसका नाम तुम्हारे रब है उसके भी रब है, हम उसको इजाजत नहीं देंगे कि वो तुम्हें कयामत के दिन बचा सके। और ये मजमून है कि उसने कदीम कौम आद को उसके कुफर की वजह से हलाक किया, यानी सोहफ इब्राहिम व सोहफ मूसा के अंदर जो है वो ये भी मजमून है कि कौम आद को हलाक किया और समूद को भी कि इनमें से किसी को बाकी नहीं छोड़ा, और उनसे पहले कौम नूह अलैहिस्सलाम को हलाक किया। ठीक है, तो ये तीनों कौमें जो है वो नूह अलैहिस्सलाम की कौम, फिर उनके पड़पोती जनरेशन जो थी कौम आद जिसको कहते हैं, फिर उसकी पड़पोती जनरेशन जिसको कौम समूद कहते हैं, ये सब के सब जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले के लोग है ना। तो इस वजह से सूरह इब्राहिम के अंदर इन सब का जिक्र मौजूद था। बेशक वो सबसे बढ़कर जालिम और शरीर थे, यानी अल्लाह ताला ने इनको जो सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया तो उसकी वजह उनका जुल्म, हद से बड़ा हुआ जुल्म, वरना अल्लाह ताला इस तरीके से पूरी पूरी बस्तियों को हलाक नहीं किया करते हैं। ये अल्लाह ताला की आदत नहीं है, कोई अल्लाह ताला को मज़ा नहीं आता बस्तियों को हलाक करके, बल्कि सिर्फ उनको इस तरह से हलाक किया जाता है जो कि हदूद क्रॉस कर जाते हैं और उसके ऊपर जम जाते हैं, और अल्लाह के नबियों के साथ जो है ना फिर जो इंतहाई दर्जे का जुल्म और मजाक वाला मामला करते हैं, फिर अल्लाह ताला उनको नहीं छोड़ता। तो वो सबसे बढ़कर जालिम और शरीर थे, यानी एक्चुअली यहाँ पर सबसे बढ़कर मुराद जो है ना वो नूह अलैहिस्सलाम की कौम की है, मुराद के 950 बरस की दावत में भी राह पर नहीं आए। नूह अलैहिस्सलाम की कौम की भी तफसील ये है कि ये 950 बरस तक सारे के सारे नूह अलैहिस्सलाम के हम उम्र नहीं थे, कि उन जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस की उम्र पाई उस तरह सारे लोगों ने भी 950 बरस की उम्र पाई, बल्कि उस जमाने की एवरेज एज जो थी वो 350 साल, 300 साढ़े 300 साल। तो एक जनरेशन को नूह अलैहिस्सलाम ने दावत दी, वो जनरेशन बूढ़ी होकर के 300 साल होके मर गई, उनकी औलादें जवान हुई, उनको नूह अलैहिस्सलाम ने दावत दी, वो बूढ़ी होकर के मर गई, उनकी औलादें जवान हुई, वो बूढ़ी होकर के मर गई, लेकिन इन लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी। नूह अलैहिस्सलाम की इस्तेकामत का भी हम जरा तसव्वुर करें, और उसके बाद फिर जाकर के अल्लाह की इजाजत से नूह अलैहिस्सलाम ने फिर उनकी बर्बादी के लिए दुआ। और कौम लूत अलैहिस्सलाम की उल्टी हुई बस्तियों को भी फेंक मारा था, फिर उन बस्तियों को घेर लिया जिस चीज ने घेर लिया, यानी ऊपर से पत्थर बरसना शुरू हुए, बस ये शख्स अगर इन किस्सों में गौर करता तो अजाब कुफर से डरता और बेफिक्र ना होता, यानी कुफारे मक्का को भी इन बस्तियों के अजाब का पता था। ठीक है, कि कौम लूत को क्या हुआ, कौम समूद को क्या, कैसे अल्लाह ताला ने मारा, कौम आद को कैसे मारा। यही है कि इन लोगों को कुछ भी नहीं पता था, बिल्कुल ही जाहिल और दुनिया से कटे हुए थे, और ऐसा ऐसा नहीं था। आगे इन सब मजामीन पर तफरी फरमाते हैं कि ए इंसान, यानी मजीद इसके ऊपर फिर ब्रांच आउट करते हैं मजामीन के ऊपर, कि ए इंसान जब ऐसे ऐसे मजामीन से तुझको आगाह किया जाता है जो बवजह हिदायत होने के हर मजमून बजाय खुद एक नेमत रब्बानी है। ठीक है ना, क्योंकि सारी जो बातें अल्लाह ताला कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, ये हमारी हिदायत के लिए कर रहे हैं, और हिदायत से बढ़ करके नेमत और कोई भी नहीं हो सकती। सो तू अपने रब की कौन कौन सी नेमत में शक और इनकार करता होगा? तो भी ये आलाई रब्बिका ततमारा, अपने रब की कौन कौन सी नेमत में तू इनकार करता है या शक करता है, और इन मजामीन की तस्दीक करके मुंतफिया ना होगा। ठीक है, यानी इन मजामीन से तुम यानी इनकी तस्दीक कर लो और फिर फायदा उठा लो। मुंतफे होना का मतलब क्या, फिर नफा हासिल कर लो। और ये पैगंबर भी पहले पैगंबरों की तरह एक पैगंबर है, यानी नबी अलैहिस्सलाम हमारे, उनको मान लो क्योंकि वो जल्दी आने वाली चीज करीब आ पहुंची है, मुराद कयामत है, यानी नबी अलैहिस्सलाम को दुनिया में तशरीफ लाना ये कुर्बे कयामत की अलामत है। क्योंकि आप के आने के बाद जो है दुनिया ने कोई 2000-3000 साल ज्यादा से ज्यादा रहे, 2-2500 साल, ठीक है ना, 1400 साल जो है वो पहले गुजर चुके हैं, आगे जो है ना वो अंदाजा लगाया जाए तो कोई 500 साल रह गए हैं या ज्यादा से ज्यादा 1000 साल रह गए दुनिया के बस। हालांकि उससे पहले जो है वो 6000 साल, 7 कुछ कुछ हिसाब से अंदाजा होता है तो 6-8 हजार साल पहले गुजर चुके हैं, तो अब तो ज्यादा थोड़ा सा टाइम रह गया। तो इससे मुराद कयामत है, और जब वो आएगी तो कोई गैर अल्लाह उसका हटाने वाला नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई उसको हटाने वाला की कुदरत नहीं रखता। बस किसी के भरोसा बेफिक्री की गुंजाइश ही नहीं। तो क्या ऐसी खौफ की बातें सुनकर भी तुम लोग इस कलाम इलाही से ताज्जुब करते हो और इस्तेहजा हंसते हो, यानी हंसते हो तुम हंसी उड़ाते हुए नबियों की और नबियों की जो बातों का आगे फैलाने वाले उलमा मशायख होते हैं, तो तुम उनके ऊपर हंसी करते हो और खौफ अजाब से रोते नहीं हो और तुम अताअत से तकबर करते हो। सो इस किब्र को गफलत से, यानी इस तकबर और गफलत से तुम बाज आ जाओ, और हसब तालीम यानी तालीम के मुताबिक इन पैगम्बर के अल्लाह की अताअत करो और इसकी बिला शिरकत इबादत करो ताकि तुमको निजात। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस सूरत को मुकम्मल किया, और अरबी जुबान के अंदर जो इसकी यानी अल्लाह ताला ने इसके लिए जो एजाज इस्तेमाल किया वो ऐसा था कि सारे के सारे सुनने वाले जो है वो उस वक्त सजदे में गिर गए थे। तो पिछली क्लास में चूंकि हमने अरबी इबारत पढ़ी थी इसकी, तो जिस जिसने सुनी थी तो उसके ऊपर सजदे तिलावत जो है वो वाजिब हो गया है, और अगर अब तक नहीं किया है तो वो कर लें। ठीक है, और जो नहीं नमाज पढ़ रही है इस वक्त, तो जब नमाज पढ़ना शुरू करेंगी तो उस वक्त सजदे तिलावत जरूर से कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज क्लास खत्म करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास से हमारे को मुताबिक होना शुरू करेंगे। इन द बिगिनिंग ऑफ सूरह तौबा नो बिस्मिल्लाह इज रिटन, सो शैल वी रिसाइट बिस्मिल्लाह इन बिटवीन इफ वी स्टार्ट। हाँ, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना तो फिर उस वक्त आउजुबिल्लाह भी पढ़नी होती है, बिस्मिल्लाह भी पढ़नी होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है वो पीछे से सूरह अनफाल से तिलावत कर रहे हो तो सूरह अनफाल खत्म होगी, सूरह तौबा शुरू होगी, बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े हुए आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके मसाइल जो है वो मारुफुल कुरान के अंदर जहाँ सूरह तौबा शुरू होती है ना, तो वहाँ पे तफसील से लिखे हुए हैं, तो चाहिए कि वो वहाँ से पढ़ भी लें। अहले तशरीह से दोस्ती रखना भी हराम है, ये ऊपर जवाब हो चुका जी। दोस्ती रखना हराम है, इखलाक से पेश आना हराम नहीं है, दोस्ती रखना हराम है। ठीक है ना, उसी तरीके से सियासत जो कहते हैं यानी जिसमें इंतजामी उमूर होते हैं, उसमें उनके साथ काफिरों के साथ भी और शियाओं के साथ भी उनके साथ एग्रीमेंट कर लेना, मुआहिदा कर लेना और उनके साथ मिलकर के इंतखाबात में दाखिल हो जाना, ये हलाल है, दोस्ती रखना हराम है। ठीक है, इन सब बातों में फर्क समझना हमारी जिम्मेदारी है कि दोस्ती अलग चीज होती है और जो पॉलिटिकल एग्रीमेंट होता है या जो सोशल एग्रीमेंट होता है वो सब अलग चीजें होती हैं, वो हलाल है, दोस्ती हराम है। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी।